37th श्लोक है, तो मेरे साथ मिल करके बोलिएगा। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। स्वधर्म जो अपना जो भी ड्यूटीज है, जो धर्म है, वो कितना भी डिफेक्टिव हो, इम्प्रेसिव ना हो, वो बेटर है, बेस्ट है, बढ़िया है। परधर्म दूसरे का धर्म, दूसरे की ड्यूटीज कितने भी अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, कितने बढ़िया हो, परफेक्ट हो, उससे बेटर है कि हमारे जो अपने ड्यूटीज या धर्म है वो कितना भी कम लगे, इम्परफेक्ट लगे, इट इज बेटर देन दूसरे के धर्म से। और जो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार, जैसा भी उसकी टेम्परामेंट है, एटीट्यूड है, जिस तरह की उसकी टैलेंट है, जिस तरह की उसकी समझ है, उसके बेस पर वो जो भी काम करता है, वो काम करते हुए कभी कोई पाप नहीं होता है। किल्बिष कहते हैं पाप नहीं होता है। धर्म शब्द का अर्थ रिलीजन नहीं है हमारे शास्त्रों में। आजकल हम उसका लूज ट्रांसलेशन कर देते हैं, रिलीजन है। रिलीजन हो सकता है मॉडर्न फिनोमेना में उसका एक पार्ट हो, पर धर्म बेसिकली, धर्म का सिंपल मीनिंग होता है जो भी हमारे जो ड्यूटीज हैं, जो हमें अलग अलग सिचुएशन में जो भी ड्यूटीज करने चाहिए नेचुरली, जो हमें या सिचुएशन के वाइज या शास्त्र के द्वारा बताए गए जो भी कर्म हमें करना चाहिए, वो सब धर्म है। माँ बाप के अपने धर्म होते हैं। धर्म मतलब बच्चों को पालने पोषने में जो भी उनकी ड्यूटीज हैं वो उनके धर्म है। बच्चों का अपना धर्म होता है। एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है तो उसका भी धर्म है, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उनके भी धर्म है, आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका भी धर्म है, जो ट्रैफिक पुलिस है उसके भी अपने धर्म है। आप यहां हम बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, श्रोता के रूप में हैं, मैं वक्ता के रूप में हूं, मेरा अपना धर्म है, आपके अपने धर्म है। अगर इनमें से कोई भी अपने धर्म को चूक करता है ना, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप में बहुत सारे हैं जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं भी, बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत ज्ञानी है, उससे मुझसे भी ज्यादा जानते हो, पर उनके दिमाग में कीड़ा चढ़े, भाई हम तो इनसे ज्यादा ज्ञानी है, हम भी आकर स्टेज में बोलेंगे, अब क्या होगा जी, गड़बड़ हो जाएगा। जिसको आपने वक्ता बनाया वो अपना धर्म निभाए, अगर आज आप श्रोता है तो श्रोता का धर्म निभाओ। वक्ता कितना भी अच्छे लगे, अट्रैक्टिव लगे, देखो सब लोग उसी की ओर देखते हैं, मैं भी चला जाऊं मुझे भी देखेंगे, हो सकता है आप में वो टैलेंट है, सब कुछ है, पर सिचुएशन वाइज किसी एक को मौका मिला है, कितना भी आपको अच्छा लगे, आप बोल भी सकते हैं, मेरे से बेटर बोल सकते हैं। तो सारे ये जो अपने अपने स्वधर्म को निभाना, कितना भी वो इम्परफेक्ट लगे, कितना भी डिफेक्टिव लगे, वो बेटर है दूसरे का धर्म कितना भी चार्मिंग लगे, अच्छा लगे। ये ह्यूमन नेचर है, हमें दूसरों की चीजें ज्यादा अच्छा लगता है खुद के चीजों के। हम अपना घर बनाते हैं, दूसरों के घर में जाते हैं तो लगता है कि इसका घर मेरे से ज्यादा अच्छा हो गया, मेरी साड़ी इससे ज्यादा, उसकी साड़ी मेरे से कुछ ज्यादा अच्छी लग रही है, उसका जब मेरे से ज्यादा बेटर है, अलग अलग ह्यूमन नेचर है। हमारे शास्त्रों में कहा कि तुम्हारी जैसी भी नेचर है, जिस तरह के तुम्हारे टेंडेंसीज है, उसके हिसाब से तुम अपने वोकेशनल जो जॉब है, जो प्रोफेशनल जॉब भी चुनो, तुम्हारे लाइफ में जो भी तुम करना चाहते हो, जिस भी आश्रम में फॉलो करना चाहते हो, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, तुम लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी बन के रहना चाहते हो, या शादीशुदा मैरिड लाइफ जीना चाहते हो, या सोशल सर्विस में रहना चाहते हो, या एक लाइफ ऑफ रिनाउंसिएशन, संन्यास होकर जीना चाहते हो, ये तुम चूज करो। किसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर के नहीं, किसी से मोटिवेटेड होकर के नहीं। तुम्हारा नेचर अगर तुम्हें अलाउ करता है, तुम्हारी टेम्परामेंट अगर ऐसा है तो चूज करो। इसीलिए सन्यासी मत बन जाओ, क्योंकि सन्यासी बनने से मोक्ष मिलता है, सन्यासी बनने से ईश्वर की भक्ति करनी पड़ती है, सन्यासी बनने से लोग रेस्पेक्ट करते हैं। कोई भी रीजन, कोई एक्सटर्नल रीजन अगर तुम्हें मोटिवेट करता है एक बड़ा से भी बड़ा अच्छा काम करने के लिए, तो तुम गलत रास्ते पर हो। पर एक्सटर्नल कॉजेस कुछ भी ना हो, बस तुम्हारा मन करता है दुनिया बेकार है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो जरूर सन्यासी बन जाओ। शास्त्र हमारा कहता है कि तुम खुद डिसाइड करो, अपने टेम्परामेंट को, नेचर को, क्वालिटी को ऑब्जर्व करके, न कि सोसाइटी में को देख करके, इन्फ्लुएंस्ड होकर के। किसी गुरु ने कहा तुम्हें शादीशुदा लाइफ, मैरिड लाइफ अच्छा लगता है, उसमें हेजिटेशन की कोई जरूरत नहीं है, एंजॉय करो। कितना भी तुम्हें प्रेशर पड़े एक्सटर्नल इंटरनल कि नहीं तुम्हें भक्त बनना है, सन्यासी बनना है, छोड़ दो उनको, एक बढ़िया गृहस्थी बनो, एंजॉय करो अपनी पति या पत्नी, बच्चे, घर द्वार, पैसा कमाना एंजॉय करो। अगर ये, इसी को कहते हैं स्वधर्म, जो तुम्हारा अभी जो हम इसकी कनेक्शन आप कहां से जोड़ेंगे, पिछले संडे में जो हम चर्चा कर रहे थे अलग अलग वर्णों की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आजकल हम जाति के हिसाब से मतलब जन्म से बाय बर्थ इसको मानने लगे, पर कोई भी शास्त्र ये रिकमेंड नहीं करता। गुण कर्म स्वभावशः, गीता में व्यास बार बार रिपीट करते हैं, ये तुम्हारे गुण, तुम्हारे नेचर, कर्म तुम जिस तरह के प्रोफेशन चूज करते हो, स्वभाव जिस तरह के तुम्हारे टेम्परामेंट है उसके बेस पर तुम चूज करो। अगर तुम अपने गुण कर्म स्वभाव से कुछ भी वर्ण चूज करते हो, वर्ण का मतलब भी होता है चूजिंग, चुनना, जो भी चुनते हो, जो भी प्रोफेशन चुनते हो, जो भी आश्रम चुनते हो, आश्रम मतलब जिस तरह की लाइफस्टाइल चुनते हो, ये तुम्हारा अपना होना चाहिए, फिर तुम उसमें टिके रहो, एंजॉय करो। तुम घास काटने का काम करते हो या डॉक्टर बनते हो या इंजीनियर बनते हो या टीचर बनते हो या प्रीस्ट बनते हो या पॉलिटिकल लीडर बनते हो या किसी मरे हुए जानवरों की चमड़ों की काम करते हो, कुछ भी करते हो, अगर तुम्हारी उसी तरह की नेचर है, उसमें आप एंजॉय करते हो, उसी में तुम्हारा स्किल है, वही तुम्हारा स्वधर्म है। उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि बाकी लोग इससे बेटर लाइफ जीते हैं, ज्यादा बेटर सम्मान पाते हैं, नहीं। और इसी तरह के, जिस तरह के लाइफस्टाइल हम चूज करते हैं, मुझे एक सोशल लाइफ पसंद है तो एंजॉय करो सोशल लाइफ को। कितने भी शास्त्र पढ़ लो, गुरु लोग तुम्हें कितना समझा दे कि ये सब बेकार है, माया है, इसको छोड़ो और तुम्हें सन्यासी बन जाओ, पत्नी बच्चों को छोड़ दो, कुछ नहीं रखा है इसमें, मोक्ष ही अंतिम परिणाम है, मत छोड़ना। अगर तुम्हारा मन तुम्हें नहीं समझा पा रहा है, अगर तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा माइंड, तुम्हारे इंटेलेक्ट उसके लिए तैयार नहीं है, तो क्या होगा, करप्शन बढ़ेगा। हमारे ऋषि मुनि बड़े, दुनिया की, इंसान की हर वो छोटी छोटी साइक से लेकर के यूनिवर्सल चीजों को भी समझ के बात करते थे। करप्शन बढ़ेगा, एक राज आपके, अगर आपके अंदर का टेंडेंसी अगर बहुत सॉफ्ट नेचर का है, आपके अंदर दया भरी हुई है, किसी भी प्राणी को आप चोट नहीं पहुंचा सकते, किसी को आप थोड़ा रूडली बोल नहीं सकते, आप कोई स्ट्रिक्ट लाइफ में बनी नहीं सकते हो, कोमल हृदय के हो, आपको दुनिया में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, एम्बिशन बिल्कुल जीरो है, आपको सोशलाइजेशन बिल्कुल पसंद नहीं है, तो कभी पॉलिटिकल लीडर मत बनना। अगर बन गए, रूलर बन गए और आपके अंदर सन्यास के सारे गुण भरे पड़े हैं, तो आप पूरे देश को बर्बाद कर दोगे। क्योंकि राजा बनने के लिए आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है, जो क्रिमिनल है उनको सजा देना पड़ता है, आपको करेक्ट डिसीजन लेना पड़ता है, आपको कहीं रूड भी होना पड़ता है, कहीं सॉफ्ट भी होना पड़ता है, कहीं डिप्लोमेसी करनी पड़ती है, कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ता है। पर आपका नेचर ऐसा नहीं है, तो राजा बनना, रूलर बनना कितना भी अच्छा लगे, अगर तुम्हारा टेम्परामेंट ऐसा नहीं है, तुम्हारा नेचर ऐसा नहीं है, मत जाओ उसमें, सन्यासी बन जाओ। और अगर तुम्हारे अंदर का नेचर सन्यासी बनने लायक नहीं है, तुम एंजॉय करते हो, रिकॉग्नाइजेशन को एंजॉय करते हो, पब्लिक प्रेज को आप एंजॉय करते हो, पावर को एंजॉय करते हो, रूल करने को एंजॉय करते हो, तो फिर कोई कुछ भी कह ले, मत बनो सन्यासी। पर अगर तुम अपने स्वधर्म में टिके रहते हो, राजा अपने धर्म को ठीक ठीक निभाता है, सन्यासी अपने धर्म को भी ठीक ठीक निभाता है, गृहस्थ अपने धर्म को ठीक ठीक निभाता है, तो आगे जाकर के सब एक ही जगह मिलने वाले हैं। हाँ, कुछ दूसरे क्वालिटीज भी जरूरत है आगे एक साथ मिलने के लिए, तो इसीलिए यह जरूरी है किसी दूसरे की लाइफस्टाइल का मतलब हमारे यहां लाइफ स्टेज कहते हैं, आश्रम उसको कहते हैं, प्रोफेशन ट्रेडिशनल वे में हम वर्ण कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये प्रोफेशनल डिविजन्स हैं, वर्ण ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, ये लाइफस्टाइल आप किस तरह के लाइफस्टाइल चूज करते हो। जो भी आपने चूज किया विदाउट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल थिंग्स, अपने समझ के हिसाब से, फिर तुम जो भी करो, अगर उसमें तुम्हारी ऑनेस्टी जुड़ी हुई है, हार्ड वर्किंग जुड़ी हुई है, बाकी जो भी स्पिरिचुअल नेसेसरीज हैं, अगर आपको राजा बनकर भी, गृहस्थ बनकर भी उस स्पिरिचुअल लाइफ में जीना है, तो भी आप बड़े इजीली जी सकते हो, फॉलो करो बस। तो जैसा भी हमारा हमने चूज किया है, अपने लाइफ को कैसे जीना है, किस तरह के प्रोफेशन चूज करना है, उसमें हम एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं और बड़े ईमानदारी के साथ, बड़े ऑनेस्टी के साथ करते हैं, तो फिर वो बेस्ट है, वो सबसे बढ़िया रास्ता है। महर्षि व्यास कहते हैं कि दूसरे का परधर्म, दूसरे का धर्म कितना भी बढ़िया से परफॉर्म्ड किया, वेल परफॉर्म्ड हो, परफेक्ट लगे, सच बात तो यह है कि कोई भी लाइफ इतना परफेक्ट नहीं होता, दुनिया में कोई भी चीज प्योरली परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी परफेक्शन प्रोफेशन परफेक्ट नहीं होता, कोई भी लाइफस्टाइल परफेक्ट नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ कमी है, अच्छी है, बुरी है, सब में है। कोई बिजनेसमैन अगर आज बिलियनरी बना है, जिसको देख करके किसी के मन में जलन होता है, उससे पूछो उसने कितना मेहनत किया होगा, उसको स्टार्टअप करते समय, शुरू करते समय कितने रातें उसने बिना सोए बिताए होंगे, कितने दिन रात में 24 घंटे में से 18-20 घंटे मेहनत किया होगा अपनी इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए। सबके अपनी अपनी अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, कमी है, अच्छी है। तुम जहां भी हो, जैसा भी हो, उसी में लगे रहो। ऐसा नहीं कि दूसरा खराब है या अच्छा है, अगर तुम्हारे लिए सही है कि नहीं तुम डिसाइड करो, तुम्हें परफेक्ट लगता है तो ज्वाइन करो। दूसरों के धर्म कितना भी परफेक्ट हो, उससे बेटर है अपना धर्म कितना भी इम्परफेक्ट हो। लास्ट है कि स्वभाव नियतम कर्म, तुम जो भी कर्म करो, अगेन जब हम बात करते हैं धर्म की, जो इन्फ्लुएंस्ड ना हो, जो किसी के द्वारा किसी भी तरीके से एक्सटर्नल दुनिया से इन्फ्लुएंस्ड नहीं हुआ हो। बहुत सारे लोग सत्संग में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, उनको अच्छा लगता है, प्रवचन सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, उनको धीरे 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 स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिक की और मोटिवेशन बनने लगता है और मोटिवेटेड होते रहते हैं। फिर एक दिन लगता है कि नहीं, ये घर गृहस्थी सब खराब है, छोड़ने लग जाते हैं। कुछ लोग छोड़ते नहीं है, परिवार तो रहता है पर परिवार के प्रति बिल्कुल इग्नोर करने लग जाते हैं। पूरा टाइम आश्रम में बिताते हैं, गुरुओं के साथ बिताते हैं, मंदिर में बिताते हैं, घर को इग्नोर करने लग जाते हैं। और वो अंदर अंदर खुश होते हैं क्योंकि उनको रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, गुरु से मिलता है, अपने साथी लोगों से मिलता है, देखो कितना त्यागी है, कितना भक्त है, कितना धार्मिक है। अंदर अंदर क्योंकि आपको अप्रिशिएशन मिलता रहता है, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलता रहता है, आपको लगता है कि आप तो सही रास्ते पर हो। बीवी बच्चे है नहीं है, या कभी कभी महिलाएं भी चली जाती हैं तो पति बच्चे कुछ भी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में घर अब गौशाला बन चुका है, वहां कोई खाने का ना मिलता है, ना बच्चों को परवरिश करने वाला कोई है। हु केयर्स, परमात्मा की प्राप्ति चाहिए। इसको हमारे शास्त्र में कहते हैं श्मशान वैराग्य। श्मशान वैराग्य होता है कि आपके अंदर कोई डिटैचमेंट की कोई फीलिंग नहीं है, संसार के प्रति आपकी कोई ऐसा भाव नहीं है कि बेकार है। पर क्या है कि आप श्मशान में गए। अब यहां श्मशान नहीं होता, यहां आप फ्यूनरल होम में जाते हैं। वैसे तो यहां फ्यूनरल होम में जाने पर भी वो सेंस आता नहीं है जो इतना बढ़िया शानदार चुप चीजें होती है ना, तो आप भी वहां भी मेस्मराइज्ड रहते हैं। वो भारत में पर आपको फील होता है जब आप श्मशान की जाते हैं, वो जो श्मशान समझते हैं जो फ्यूनरल फील्ड होता है, मैदान है जिसमें खुले में वो आग जलता है, इंसान को उसमें डाला जाता है, तो जब आप देखते हैं तो अंदर लगता है लाइफ की तो क्या है, लाइफ में क्या रखा है, कितना बेकार है, पता नहीं कब कोई चले जाए। बिल्कुल लाइफ के प्रति वैराग्य आ जाता है, संसार सब बेकार है, कुछ नहीं रखा है यार, सबको जाना है, ऐसे ही आग में सबको जलना है। मन उदास हो जाता है, लगता है सारी दुनिया बेकार है, छोड़ देना है, क्या रखा है ये, परिवार के लिए लड़ो, ऑफिस में ये करो, इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है, आखिर मरना है, आग में जलना है। सब लोगों में, बहुत लोगों में, किसी में कम आता है, किसी में ज्यादा आता है, पर कितनी देर तक टिकता है। कुछ लोग तो घर आते ही नहा धोकर के नाश्ते में बैठ के ही गालियां शुरू करने लग जाते हैं, दुकान में बैठते ही बेईमानी शुरू करने लग जाते हैं। कुछ लोगों का टिकता है, थोड़ा बहुत सॉफ्ट नेचर वाले होंगे, चार पांच दिन सात दिन तक टिकता है लाइफ, बड़ा कुछ नहीं रखा है लाइफ में, ईश्वर भक्ति याद आती है। ज्यादा से ज्यादा सात दिन से ज्यादा किसी का टिकता नहीं, एक ही दिन में जनरली तो दो चार घंटे में ही खत्म हो जाता है, वापस हम नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं। और अगर श्मशान में कोई रोज काम करने वाला हो, उसका तो दिल ऐसा हो जाता है कि इतना हैबिचुअल हो जाता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता जिंदा और मुर्दे में, रोज की बात हो गई है। बिल्कुल वो जो अंदर की जो सॉफ्टनेस है वो खत्म हो जाता है, तो डेड बॉडी में से ही चीजें चुराने लग जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। श्मशान वैराग्य का अर्थ, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के कारण आपके अंदर कोई अच्छाई या बुराई का भाव आता है तो थोड़ी देर के लिए टिकता है, थोड़ी देर, कुछ मिनट हो सकता है, कुछ घंटे हो सकता है, कुछ दिन हो सकता है, कुछ महीने हो सकते हैं, कुछ साल भी हो सकता है। पर जो सटन है वो ये है कि आपको वापस अगेन आपका मन वो पुराने चीजों में वापस जाना ही जाना है, कोई डाउट नहीं है, नहीं जाना है। अगर वो आपके अंदर से ना आया हो, वो अंदर से अगर नहीं आया हो, महात्मा बुद्ध बचपन से ही उनके लक्षण लगे कि भाई ये टिकने वाला नहीं है, मां बाप को लोगों ने बता दिया था, विद्वानों ने, ज्ञानियों ने, कि ये आगे जाकर के राजा नहीं बनने वाला, सन्यासी बनेगा। उन्होंने, मां बाप ने क्या किया, तो महल के चारों दीवार ऊंचा कर दिया, बहुत बड़ा महल बनाया, उसके अंदर सुख सुविधा की सारी, लग्जरी की सारी चीजें रखे, जो मां बाप बच्चों को जिन चीजों से जनरली आम मां बाप दूर रखते हैं वो सब चीजें महात्मा बुद्ध को, सिद्धार्थ को मुहैया कराया गया, क्योंकि वो उसका लाइफस्टाइल इतना खराब हो जाए कि कि वो कभी वो सन्यास की ओर उसका नजर ही न जाए। बाहर नहीं जाने देते थे, कहीं कोई चीज देख ना ले जो बुरी चीजें खराब चीजें कि उसका मन बदल जाए। शादी जल्दी करवा दिया कि मन लगा रहे, और बहुत सुंदर स्त्री ढूंढ के कराया कि मन लगा रहे। पर क्या हुआ महाराज, शिकार पर या युद्ध पर कहीं बाहर गए, सिद्धार्थ को एक दिन मौका मिला बाहर जाने का, अपने साथी को बोला, सारथी को जो चेरिएटर होता है, कि चलो बाहर चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, महाराज जी का हुक्म है, आप जो करना यही करो। महाराज जी नहीं है, चलो घूम फिर के एक दो घंटे में आ जाएंगे। सिद्धार्थ चेरिएटर को सारथी को लेकर बाहर चला गया दो चार घंटे के लिए, जो देखा उतना उसके लिए काफी था। स्टोरी आपने सुनी होगी, कोई बुजुर्ग आदमी डंडा पकड़ के दिख नहीं रहा है, उसने पूछा ये कौन है, बोले ये बुजुर्ग है। बुजुर्ग ये क्या होता है, क्योंकि उनको कभी ये सब देखने नहीं दिया, रियलिटी लाइफ की जो रियलिटी है। बोले सबको एक दिन इसमें गुजरना पड़ता है, बुढ़ा हो जाते हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, दिखता नहीं, चल नहीं सकते, और भी प्रॉब्लम है। अच्छा सबको करना पड़ता है? हाँ जी। देखा है कि शव जा रहा था, डेड बॉडी, एक कंधे पर उठा के ले जाते हैं ना जलाने के लिए, ये कौन है, ये से क्यों लेकर जाते हैं? बोले ये डेड बॉडी है, ये क्या होता है, ये मरना पड़ता है सबको, जब मरते हैं तो उनको जलाने ले जाते हैं, सबको मरना पड़ता है, मुझे ही मरना पड़ेगा, ये मरना क्या होता है? तो समझाया कि ये लाइफ की एक पार्ट है, सबको उसे गुजरना पड़ता है जब आप नहीं होते हो। दो तीन चीजें उन्होंने देखा, वापस आए, हो गया उतना काफी था। आधी रात को अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ करके सिद्धार्थ भाग गया, महात्मा बन गया। मेरा भाव है कि अगर आपके अंदर वो टेम्परामेंट है, थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत है, वो जल उठेगा, कोई नहीं रोक सकता। अगर नहीं है, आप रोज धुन मचाते रहो, जैसे ही मौका मिलेगा वापस आ जाएंगे। महात्मा बुद्ध के अपोजिट भी आपको मिलेंगे, बहुत सारे लोग किसी इन्फ्लुएंस में आकर सन्यासी बन जाते हैं। सन्यासी बनने के बाद दो चार साल के बाद जब मन उनका नॉर्मल इसी की ओर आता है, फिर वो ढूंढने लगते हैं, अंदर अंदर गिल्टी फीलिंग करते हैं, ये क्या मैं बन गया, ये गृहस्थियों से जलने लगते, काश मैं भी एक नॉर्मल आदमी होता, महिला होता, मेरी भी शादी होती, बच्चे होते, मैं भी फिल्म देखने जाता, मैं भी कपड़े पहनता, मैं भी रेस्टोरेंट में खाता, मैं भी ये करता। अब ये नहीं हो सकता, कपड़े बदल चुके हैं, सोशल प्रेशर बहुत बड़ा होता है सोसाइटी का, अब क्या करें? क्या होता है फिर? फिर छुपाकर होता है, फिर करप्शन होता है। मोस्ट ऑफ रिलीजियस फील्ड में अगर आपको करप्शन दिखता है, वो चर्चों में हो, मंदिरों में हो, आश्रम में हो, कहीं भी, उसका एक ही कारण है, स्वधर्म के साथ कंप्रोमाइज करते हैं। परधर्म क्योंकि बड़ा अट्रैक्टिव दिखता है, अच्छा दिखता है, बेहतर दिखता है, बढ़िया दिखता है, हम विदाउट अंडरस्टैंडिंग माई ओन टेम्परामेंट नेचर, आई जस्ट एक्सेप्ट समथिंग विच लुक्स वेरी लिक्विटिव बेटर देन। आगे बोलिए, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः। जो सहज कर्म होते हैं, जो हमारे नेचर के टेम्परामेंट के हिसाब से जो काम हम करते हैं, सदोष होने पर भी, इवन उसमें कोई दोष होता भी है, डिफेक्टिव होता भी है, तो नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई काम है, सर्वारंभा, जितने भी अंडरटेकिंग है, कोई भी काम आप शुरू करते हो, कोई भी चीज आप अंडरटेक करते हो, सब में दोष तो होता ही होता है। बिल्कुल वैसा ऐसा कोई आग नहीं होगा जिसमें धुआं ना हो, किसी में कम धुआं है, किसी में ज्यादा धुआं है, हर आग तो धुआं की नेचर के साथ रहता है। मौका मिला नहीं, गीली लकड़ी आपने डाली नहीं, थोड़ा सा आसपास के ऑक्सीजन कम हुआ नहीं, आग से धुआं निकलने लग ही जाता है। पर इसका अर्थ नहीं है कि हम आग जलाना बंद कर दें, इसी तरह हमारे लाइफ में जो भी धर्म हम चुनते हैं, जो भी ड्यूटीज हम चुनते हैं, जो हम चुनते हैं, माँ बाप होने का ड्यूटी चुनते हैं या बच्चे होने का ड्यूटी चुनते हैं, कुछ भी चुनते हैं, वो सब में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होता है। बच्चों को ज्यादातर लगता है काश हम भी बड़े होते, माँ बाप की तरह होते, अपनी मर्जी चलाते। देखो हम बच्चे हैं, हर जगह रिस्ट्रिक्शन है, टीवी इतने घंटे से ज्यादा नहीं देख सकते, और माँ बाप देखो जब मर्जी देखते, कोई टोकने वाला है उनको? ये मत खाओ, वो मत खाओ, और ये देखो ये जो मर्जी खाते हैं, बीच में मत बोलो, ये मत करो, और ये आपस में बीच में बहुत बोलते हैं, सब करते हैं। तो बच्चों को लगता है काश हम भी माँ बाप हो जाते, कितना मजा आता, कितनी फ्रीडम होती, अपनी जो मर्जी करते, कोई टोकने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं। पर बच्चों को क्या पता माँ बाप के कितने दर्द हैं, कितने स्ट्रेस है, कितने प्रॉब्लम है, उनके अपने प्रॉब्लम है। बच्चे जब माँ बाप बन जाते हैं फिर सोचने लगते हैं काश हम बच्चे होते, कोई टेंशन नहीं होता, कोई परेशानी नहीं है, कोई सोशल प्रेशर नहीं है, कोई केयर नहीं है, लाइफ कितना सुकून भरा होता, काश हम दोबारा बच्चे बन जाएं। बच्चों का अपना दुख है, बड़ों का अपना दुख है, बड़ों का अपना सुख भी है, बच्चों का भी अपना सुख है। तो सब में कुछ ना कुछ सुख और दुख है। हर काम करने वाला सोचता है काश मैं बॉस बन जाता, पर बॉस की अपनी समस्या है, उसके ऊपर भी बॉस होते हैं, उसके ऊपर भी टेंशन होता है, उसको भी बड़े सारे स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। छोटे काम, छोटे लेवल में काम करने का अपना सुख है, दुख भी बहुत है, पर सुख भी अपना है। पर इंसान है कि वो अपनी सुख को कम देखता है, दूसरों के सुखों से इंस्पायर्ड होता है। तो नेचर बड़ा विचित्र है, घास की अपनी सुख है, अपना दुख है। बड़े पेड़ों होने का घास सोच रहा होगा, छोटे पौधे सोच रहे होंगे काश हम भी बड़े पेड़ बनते। देखो जो भी आता है बड़े पेड़ को देखता है, कितना आकड़ के सिना तान के खड़ा है, हवा के रुख को भी बदल देता है, बारिश को रोक देता है, नीचे आने में कम कर देता है। और हम है देखो, कोई भी पैदल चढ़ के चला जाता है, हमें कुचल डालता है, मचल डालता है, काश हम भी बड़े पेड़ होते। वैसे घास पेड़ नहीं सोचते, पर इंसान की नजर से सोचता होगा। पर बड़े पेड़ की अपना दुख है, बड़े पेड़ का है कि हवा आए तो सबसे पहले उसी को तोड़ता है, घास का कुछ नहीं बिगाड़ता है। इंसान सबसे पहले बड़े पेड़ को काटता है अपनी जरूरत के हिसाब से। सबके अपने अपने प्रॉब्लम है, घास को प्रॉब्लम है कि मैं छोटा क्यों हूं, बड़े पेड़ को प्रॉब्लम है कि मैं बड़ा क्यों हूं। सब में कुछ दोष है, सब में कुछ अच्छाइयां है, पर जो भी हमारा है वो ही हमारा धर्म है, और उसी को ठीक से निभाना, ऑनेस्टी के साथ निभाना, डेडिकेशन के साथ निभाना, डिवोशन के साथ निभाने में हम भी वहीं पहुंच सकते हैं जहां घास पहुंचेगा, पेड़ भी आखिर में वहीं पहुंच सकता है। इसीलिए दोनों में कुछ अच्छा है और बुरा है, इसीलिए किसी को छोटा और बड़ा ना समझो, दूसरे के धर्म को ज्यादा अच्छा समझने की जरूरत नहीं है। आसक्त बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्यासेनाधिगच्छति। पर आपने कहा कि कोई भी काम करो आखिर में वहीं पहुंचोगे, गृहस्थ रहो, सन्यासी रहो, वनप्रचारी रहो, वानप्रस्थी रहो, आप छोटा काम कर रहे हो, बड़े काम कर रहे हो, घास कट रहे हो या घास काटने वाले का मालिक बने हुए हो, आप दुकान खोल रखे हो कि डॉक्टर बने हो, नेता बने हो, सबको आखिर में वहीं पहुंचना है, कैसे होगा? तो महर्षि व्यास उसकी इस श्लोक में जवाब देने की कोशिश, आप कुछ भी काम करो, प्रोफेशनली आप कुछ भी बनो, पर ये अगर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करते हो तो सब एक ही जगह पहुंचोगे। असक्त बुद्धि ही, अगर आपकी माइंड डिटैच्ड हो, कुछ भी करो, दुकान में बैठे हो या मंदिर में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो या घर में बैठे हो, अगर माइंड डिटैच्ड है तो फिर आप एक ही लेवल के आ गए। अगर अटैच्ड हो तो क्या फर्क पड़ता है, आप घर छोड़ के आश्रम में रुके। आपको लगा घर में मोह है, माया है, बीवी बच्चे पति पत्नी संसार, ये सब माया का संसार है, आप छोड़ दिए, आप आकर किसी मंदिर में मठ में आश्रम में रहने लगे, वहां फिर आप अटैच्ड हो गए। मेरा आश्रम है, यह आश्रम की जमीन है, यह आश्रम का वो है, मेरे आश्रम की चार रूम है तो आठ रूम बनना चाहिए, मेरे आश्रम के लिए डोनेशन दो, मेरे आश्रम का ये करना है, यहां भी आप मेरे मेरे में ही रह गए। तो आप आश्रम में रहते हो कि घर में रहते हो फर्क नहीं पड़ता, फर्क यह पड़ता है कि आप कहीं भी रहते हो कि आपका माइंड कैसा है। अगर डिटैच्ड है तो आप फैक्ट्री में काम करते हुए भी सन्यासी के सुख पा सकते हो, अगर अटैच्ड है जंगल में आश्रम में रहते हुए भी आप उस फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी के दुख के भागी बन सकते हो, क्योंकि दुख एक्सटर्नल कम होता है, बहुत कम होता है। कभी कोई हम बीमार पड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, हमें किसी ने कुछ बुरा कह दिया, वो दुख कम, वो लाइफ में बहुत ज्यादा नहीं होता है। ज्यादा दुख तो मेंटल होता है, हमारे अपने अंदर से पैदा होता है। वो क्यों होता है? यही अटैचमेंट के कारण, एंगर के कारण, ग्रीड के कारण, ये सब चीजें हमारी अपने माइंड के प्रॉब्लम है। अगर ये सब नहीं है फिर आप रास्ते में बैठे हो या घर में बैठे हो, मठ में बैठे हो या ऑफिस में बैठे हो, आप व्हाइट हाउस में बैठे हो या ब्लू हाउस में बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी कपड़े क्या है फर्क नहीं पड़ता, आप भगवा पहने हो कि सफेद पहने हो, कि लाल पहने हो, कि नीला पहने हो, कि काले पहने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने बाल आपके कैसे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, बिल्कुल नहीं है, कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपका माइंड कैसा है। अगर डिटैच्ड है तो आप उस रास्ते पर, रास्ते के पथिक हो जो आत्मा की ओर जाता है, परमात्मा की ओर जाता है। प्रोफेशन कोई भी हो, सर्वत्र जितात्मा, हर जगह आपने अपने आप को जीत लिया है। अपने आप को जीता मतलब अपने इंद्रियों को, सेंसेस को, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में कर लिया हो। आप गृहस्थी हो पर आपकी सेंसेस आपके कंट्रोल में है, आपकी माइंड आपकी कंट्रोल में है, आप इच्छा के नौकर नहीं हो, इच्छा आपकी नौकर है। मेरी आप अपनी मर्जी के नौकर नहीं है, मर्जी आपकी नौकर है। आप अपनी विश के नौकर नहीं है, विश आपके नौकर है। तो फिर आप क्लब में डांस कर रहे हो या मंदिर में कीर्तन कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जितात्मा आप हो चुके हैं तो आपकी मन इंद्रियों पर अगर आपकी कंट्रोल आ चुका है तो फर्क नहीं पड़ता कि आप जंगल में हो कि शहर में हो। महर्षि जनक की कहानी आप सबने सुनी होगी, अरण्य ग्रंथों में कहानी आती है। राजा जनक थे, महल में रहते थे, पर उनका जो अंदर का जीवन है वो सन्यासी की तरह था। ऋषि मुनि आश्रमों में रहते थे, तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, साधना करते थे, अपने आप को प्यूरिफाई करने की पूरी कोशिश करते थे। जैसे आप लोग सत्संग में बैठे हैं, सत्संग में हम क्यों रेगुलर आते हैं, इवन बहुत सारी चीजें हम जानते भी हैं तो उसमें रिव्यू हो जाता है, तो रिफ्रेश हो जाता है, नहीं जानते हैं सीखने को मिलता है। ज्ञान बहुत जरूरी चीजें हैं अपने कर्मों को ठीक करने के लिए, भक्ति को अच्छा बनाने के लिए। तो उनका भी अपना सत्संग होता था, उसको कहते थे ब्रह्म सभा, जहां ऋषि मुनि लोग बैठ के, वो तो घर गृहस्थी की चर्चा नहीं करते थे ना, हम लोग तो कभी कभी घर गृहस्थी की समस्या भी चर्चा कर लेते हैं, पर वहां तो केवल आत्मा परमात्मा की चर्चा ही होती थी, संसार और दुनिया की चर्चाएं होती थी, सत्संग टाइप का समझ लीजिए। तो उसको जो प्रिजाइड करते थे वो वशिष्ठ होते थे, क्योंकि वो सब में सबसे रिस्पेक्टेबल थे, सबसे बड़े माने जाते थे, ब्रह्मज्ञानी थे। पर वशिष्ठ हमेशा, जनक भी उस सभा में आते थे और जब भी आते थे वशिष्ठ खड़े हो जाते थे, उनको सम्मान देते थे। बाकी ऋषियों को यह बात चुभती थी, भाई ऋषि हम हैं, सारा सम्मान, मतलब सोसाइटी में ये हमारे इंडियन कल्चर में अभी भी है, जिसका कभी कभी हम एक्सप्लोइट भी करते हैं, कि जो त्यागी है सन्यासी है उसका सम्मान ज्यादा होता है। तभी तो हम साधु सन्यासियों को सम्मान करते हैं, क्योंकि वो हम जो सुख भोगते हैं उस सुख सुविधाओं को उन्होंने छोड़ रखा है। हम अध्यात्म की राशि, ये राजा है, प्रजा इसको सम्मान करे, हम क्यों सम्मान करें? ये हमारी ट्रेडिशन है, इसीलिए आप लोग ब्राह्मणों के पैर छूते हैं, ज्ञानियों के पैर छूते हैं, ये ट्रेडिशन, क्योंकि ब्राह्मण त्यागी कैटेगरी में आता था। मुझे नहीं पता आजकल के ब्राह्मण त्यागी कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं, पर प्रॉब्लम है कि शास्त्र में कहा जो त्याग करता है वो ब्राह्मण है। आजकल तो शर्मा बन गया तो अब्राह्मण बन गए, तो वो तो अलग बात है। इसीलिए उस ब्राह्मण के पैर छूने की व्यवस्था थी जो त्यागी था, ज्ञानी था, मुमुक्षु था, ईश्वर भक्त था, इसीलिए हम करते थे। पर ऋषियों को लगा वशिष्ठ जी कुछ वो वही ट्रेंड अपना रहे हैं, जैसे हम लोग भी पॉलिटिकल लीडरों को खूब गालियां देते हैं, सब बेईमान है, पर कोई भी फंक्शन हो चीफ गेस्ट पॉलिटिकल लीडर ही होता है, वो यूनिवर्सिटी में हो या मंदिर में हो। मान लीजिए कितने बड़े साधु संन्यासी यहां आए हुए हो, और अगर आपके गवर्नर आ गए तो उसका सीट ऊंचा हो जाएगा, सन्यासी का नीचा हो जाएगा। और वैसे तो दिन रात 24 घंटे हम गालियां देंगे, नेता कितना करप्ट है, देश को खा गए, बर्बाद कर गए। तो ऋषियों को लगा शायद वशिष्ठ में इसी टाइप की कोई साइक है। वैसे तो राजा लोग खराब होते हैं, पर राजा आते ही सम्मान देने लगते हैं। वशिष्ठ को लगा कि लोगों में कुछ मिसपरसेप्शन बन रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये दूर होना जरूरी है, नहीं तो उनके अंदर अंदर वो गुस्सा, वो जो दर्द है उनको खाएगा, फिर उनको नहीं खाएगा पूरी सोसाइटी को खराब कर देगा। वो दूर होना जरूरी है, जो भी उनके अंदर गलतफहमी है ये दूर होना जरूरी है। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, पर वो उनकी सीक्रेट प्लान थी। एक दिन ऐसे ही ब्रह्म सभा चल रही है और आश्रमों से एक व्यक्ति दौड़े दौड़े आया, सभा के अंदर पहुंचा, बोले आश्रम में आग लग गया है। तो सभी साधु ऋषि मुनि सब भागने लगे, आश्रमों में पहुंचने लगे, वहां आग नहीं लगा था, बोले किसी झूठा ने बदमाश ने फैला दिया होगा, तो भाग गए। उस दिन सत्संग नहीं हो पाया। दो तीन महीने बीता, कोई इतना जल्दी नहीं था, एक दो महीने बीता, लोग भूल चुके थे ऐसी कोई इंसिडेंट थी। दोबारा सत्संग चल रहा है और दौड़े दौड़े महल से, जनक के महल से मैसेंजर दूत आकर के बोलता है, महाराज महाराज महल में आग लग गया है। सब राज जनक की ओर देख रहे हैं, जनक जी शांत बैठे हैं, कोई मुंह में कोई विकार नहीं है, कोई फेशियल एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल वैसे ही शांत बैठे हैं जैसे सुनने से पहले बैठे थे। ऋषि मुनियों एजिटेटेड ऋषि मुनियों हो चुके हैं, पर जनक उतना ही शांत बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। बात खत्म हो गई, ना महल में आग लगा था ना आश्रमों में आग लगा था। वशिष्ठ एक दिन आश्रमों में गए, सभी ऋषियों को इकट्ठा किया, जनक वहां थे नहीं, सबको बुला के पूछा, बताओ तीन महीने पहले जब आपको समाचार मिला आपके आश्रमों में आग लग गया है तो आप लोग क्यों दौड़े थे, क्या बचाने के लिए दौड़े थे? बोले अपने अपने आश्रम बचाने के लिए, कुटिया। वो आजकल के तरह ऋषि मुनि तो थे नहीं कि महलनुमा आश्रम में रहते हैं, तो वो कैसे थे? वो रियल ऋषि मुनि तपस्या के रास्ते पर चलते थे, वो झोपड़ी में रहते थे जहां घास फूस का बना हुआ होता है। अंदर क्या होता था? हवन के लिए कुछ समिधाएं, कुछ कुश, कुछ घी के डब्बे, घी के बर्तन, दैट्स इट। और पहनने के लिए दो चार लंगोट, खाने के लिए कुछ नहीं रख सकता, क्योंकि अपरिग्रही का मतलब होता है जो सुबह खाओ शाम को घर में नहीं मिलना चाहिए, जो सुबह खाओ रात के घर में नहीं मिलना चाहिए, भिक्षा से जो मिला गुजारा करते हैं। तो कुटिया में रखा ही क्या था, सारा मिलाओ तो दो उस समय में भी 10 पैसे का सामान नहीं था, पर बचाने के लिए दौड़े थे। वशिष्ठ ने पूछा, सारा मिला के कितने पैसे का होगा? जो भी उन दिनों पैसा चलता होगा, जो भी हिसाब चलता होगा। कुछ बोले नहीं वशिष्ठ ने, कोई रिमार्क नहीं दिया कि आपने गलत किया सही किया, जस्ट पूछा। फिर पूछा, बताइए जनक के महल से जब दूत आया महल में से आग लग गया है तो जनक का रिएक्शन क्या था? बोले वो तो बड़े शांत थे, कोई एजिटेशन तो छोड़िए दूर की बात है, मुंह में कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था, बिल्कुल वैसे ही थे जैसे पहले थे। तो बताओ तुम बड़े तपस्वी हो या जनक बड़ा तपस्वी है? महल में क्या कितने का सामान होगा? करोड़ों का, उस समय भी करोड़ों का ही होगा। अगर करोड़ों के सामान नष्ट होने पर भी एक व्यक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता और चवन्नी के नष्ट हो जाने पर किसी को फर्क पड़ता, बताओ ऋषि कौन है, तपस्वी कौन है, त्यागी कौन है? तुम्हारी भ्रम धारणा है, ये मिसपरसेप्शन है, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम घर परिवार छोड़ के आए हो, जंगल में रहते हो, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हो, इसीलिए तुम बड़े हो। जनक ने कुछ छोड़ा नहीं है तो जनक छोटा है, ये मिसपरसेप्शन है। वो महल में रहकर भी हमसे बड़ा तपस्वी है, बड़ा त्यागी है, बड़ा वैरागी है। वैरागी समझते हैं, डिटैच्ड है। और हम सब कुछ छोड़कर भी ये 2% की कुटिया के साथ अटैच्ड है। मैं जनक को सम्मान देता हूं राजा होने के कारण नहीं, वो तपस्वी है, उसे सीखने की जरूरत है, वो हम सबका गुरु बनने लायक है, इसीलिए जनक को सम्मान मिलता है। और आपको भी जनक की सम्मान करनी चाहिए, राजा होने के कारण नहीं, हमसे ज्यादा तपस्वी है, त्यागी है, सीखने के कारण। देवियों सज्जनों, आप राजा होकर भी अगर असक्त बुद्धि रखते हैं, डिटैच्ड माइंड रखते हैं, अपनी सेंसेस पर कंट्रोल पाते हैं, तो भी आप वहीं पहुंचते हैं जहां वशिष्ठ पहुंचेगा। यही भाव है पिछले श्लोक का, कि आप प्रोफेशनली कुछ भी बने, लाइफस्टाइल के हिसाब से आप कोई भी आश्रम चूज करें, अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं तो सब चारों आश्रम वाले भी वहीं पहुंच सकते हैं। विगता स्पृहा, जिसकी प्रुहाएं खत्म हो चुकी है, इच्छाएं, रसगुल्ला खाया अच्छा लगा, ठीक है। हमारी क्या है, एक आम आदमी की क्या है, अच्छा लगा, डिमांड बढ़ जाता है, और चाहिए। आज नहीं, 4 दिन के बाद फिर रसगुल्ला देखते ही मन करता है, सबसे पहले रसगुल्ले वाले, गुलाब जामुन वाले लाइन में लग जाओ, बचेगा नहीं बचेगा बाद में। पर इसका अर्थ नहीं कि जो वैरागी है वो रसगुल्ला नहीं खाता है, वो भी खाता है। 4 दिया 4 भी खा लेगा, 20 दो 20 भी खा लेगा, पर 4 के बाद 5वां की डिमांड नहीं रहे है, ना बिल्कुल ना दो 1 की डिमांड है, या 20 दे दो तो 21 की डिमांड है। हमारी प्रॉब्लम है नहीं भी खाओ, अंदर अंदर डिमांड बना रहता है। और जो तपस्वी है वो खाए भी डिमांड बिल्कुल नहीं रहता है अंदर से। विगत स्पृह, किसी चीज के प्रति को ही विराग नहीं है। पेड़ के नीचे बैठा दो तो भी बैठ जाएगा उतने ही खुशी से, किसी राजमहल में 5-स्टार होटल में भी बैठा दो उतने ही खुशी से बैठ जाएगा, उतने ही आनंद के साथ। नैष्कर्म, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो, आपकी माइंड ऐसा है, फिर तो आप निष्कर्म्य सिद्धिम परमाम अधिगच्छति, फिर तो आप उस जो निष्काम कर्म, जो सन्यासी के जो भी कर्तव्य हैं, कि वो कर्म रहित हो जाता है, कुछ सांसारिक कर्म नहीं करता सन्यासी, वो सांसारिक कर्म ना करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, तुम वो सब कुछ करते हुए भी वही सिद्धि प्राप्त कर सकते हो अगर ये असक्त बुद्धि हो, जितात्मा हो और विगत स्पृह हो। और आखिर में तुम भी उस परम गति को पा सकते हो, जिस परम गति को सन्यासी पाता है उसी परम गति को कोई गृहस्थ भी पा सकता है, जिस परम गति को कोई सर्वत्यागी पाता है उसी परम गति को कोई पॉलिटिकल लीडर भी पा सकता है, कोई ऑफिस में काम करने वाला भी कर सकता है, कोई फैक्ट्री में काम करने वाला भी कर सकता है। सिंपल कंडीशन है कि आप बाहर क्या करते हो, वर्ण और आश्रम की व्यवस्था में आप अपने टेम्परामेंट के, नेचर के हिसाब से करो, जितनी जैसी आपको करना ठीक लगता है। पर अंदर अगर आपकी सिचुएशन, मन बुद्धि अगर इस तरह का है, फिर आप उसी स्थिति में पहुंच जाओगे जहां कोई भी पहुंचने की इच्छा करता है। तो ये बड़ा सुंदर 2-3 श्लोक आपके सामने रखा, आशा करता हूं आप लोगों को अच्छा लगेगा। जो लोग नए आए हैं आप सत्संग में हमारे आइए। हर रविवार को कोई भी मौसम हो, कैसा भी हो, 10 से 12 सत्संग होता है, आपको अच्छा लगेगा। इवन बहुत सारी चीजें हम जानते भी हैं, जब हम जाते हैं हमारा रिफ्रेश हो जाता है। कुछ चीजें हमारे अंदर, हमें डॉक्टरों को भी सब पता है, पर डॉक्टर जब बीमार पड़ता है वो फिर उसी किसी दूसरे डॉक्टर की जरूरत पड़ता है, उसको थोड़ा फोर्स करने के लिए, भाई दवाई खानी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी, खान पान की रखनी पड़ेगी। तो जब तक हम दूसरों से सुनते नहीं है तो हमारे अंदर की अच्छाइयां कभी कभी जगती नहीं है। तो अच्छा है आप लोगों को आते रहिए, आपके लिए स्वागत है। ये आर्य समाज सबके लिए ओपन है। कुछ लोगों को कुछ लगता है शायद कुछ मेंबरशिप वगैरह कुछ होने तभी आते हैं, को पूछते हैं, ये सबके लिए ओपन है, कोई भी आ सकता है 10 से 12। आप सब कोई एंजॉय कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।